ये लीला तो बताने को भूल गया मैं, क्योंकि मैंने सीक्वेंस बदली कर दिया ना, सब सीक्वेंस बदली हो गया, इसमें अंतर वो रह गया, लेकिन वो बताना जरूरी है कि यहां पर राक्षस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर ऐसी चटपटी लीलाएं होती रहती है। आप सोचिए, राधा रानी छुप छुप के कृष्ण को कमरे में मिल रही है, उसमें से वहां से घोड़ा आता है, समझो केशी आता है, तो लीला में भंग होगा ना प्रभु जी, तो कैसे चलेगा। तो यहां पर लीलाएं ऐसी हो रही है कि यहां पर भंग होना मुमकिन नहीं है, बीच में कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए इतनी सुंदर लीलाओं के बीच में। इसलिए राधा रानी ने यहां पर किसी राक्षस को प्रवेश नहीं दिया। कैसे नहीं दिया, जब वो वृषभानु महाराज और नंद महाराज वहां से गोकुल से रावल से निकले, वहां पर से रोज के आतंक की वजह से दूर आ गए और अपने गांव में बस गए, फिर नंदगांव बरसाना में, तो कंस ने भेजा एज यूजुअल एवरीडे राक्षस को, तो कोई मिला नहीं, सब नगर खाली हो गया। बोला क्या हो गया, बोले चले गए वो लोग। कहाँ चले गए, आगे आगे गए उत्तर दिशा में, तो नंदगांव में आ गया वो। कौन आ गया, राक्षस सेनापति, हाउ हाउ और बुलाओ, और दो बच्चे उनके। देखा उन्हें कृष्ण बलराम यहाँ पर रेती में खेल रहे हैं, जाकर तुरंत कृष्ण भगवान को पकड़ने गया वो, स्पर्श करते ही चारों लोग पत्थर बन गए। हाउ बुलाओ, अभी भी वहां पर वो हाउ बुलाओ का पत्थर की मूर्तियां हैं, जिसको बाद में यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान शरारत करने पर उसको डराने के लिए उसका इस्तेमाल किया। हाउ बुलाओ, बोलते ये देखो हवा आएगा, हवा आएगा, भागो भागो जल्दी यहाँ से, चलो जल्दी खाना खाने के चलो, देखो हवा आ रहा है। तो पीछे दिखते भी नहीं, भाग के घर जाते हैं। एक दिन मैया को बोलते हैं कि मैया वो जो हवा हवा करते हमको देखना है, उसको किधर है वो। वहां बैठा है, बहुत आवाज कर रहा है, वो आएगा खा जाएगा आपको। तो बच्चा जो है डर जाता है। तो उसके बाद में कंस ने देखा कि अरे जो मैं उनको रिटर्न टिकट निकाल के देता हूँ, लेकिन वो वन वे टिकट में खत्म हो जाते हैं, रिटर्न टिकट में आता ही नहीं कोई वापस। तो ये भी गया, सेनापति भी गया, वो लौट के नहीं आया, अब मैं खुद जाता हूँ। तो खुद जब वो आया तो जावट की सीमा में उसने प्रवेश किया, पता है क्या हो गया, प्रवेश करते ही वो स्त्री बन गया। आप लोग तो बड़ी बात क्या है इसके अंदर, इसके लिए आपको गर्ग संहिता पढ़ना पड़ेगा। गर्ग संहिता ने, गर्ग मुनि ने कंस के दिग्विजय का और पराक्रम का पूरा 2-3 अध्याय में वर्णन किया है। जितने राक्षस कृष्ण भगवान ने मारे वो सभी को उसने दास बनाकर अपने पास रखा था, उसका पूरा वर्णन है, कहाँ कहाँ जा जाकर बुला बुला कर घुस घुस कर उसने सबका परास्त किया। उनको सबने जीवन दान मांगा, उनसे भिक्षा मांगी, तब जीवित छोड़ दिया, दास बना दिया, टैक्स लेना आरंभ कर दिया। कूल्या पीड़ को उन्होंने कई मील तक उठाकर फेंका था, वो देखकर जरासंध तो बोला अभी अरे किसने फेंका उसको, उसके बाद कोई युद्ध वुद्ध करने की बात नहीं, उसको जाके 2 कन्या दे दो, अस्थि प्राप्ति को विवाह कर दिया उसने। क्योंकि जो उसका हाथी जो जरासंध का साकल तोड़कर भाग गया था, इतना शक्तिशाली था वो कंस के अखाड़े में घुस गया, जहां पर कंस अकेले कई योद्धाओं को एक साथ मार रहा था। तो जैसे ही ये हाथी भाग के आया, कोयला पीड़ इतना भयंकर फेमस हाथी था वो, तो सब योद्धा भाग गए, तो ये अकेला खड़ा हो गया। उसने वो हाथी को सूंड से पकड़ा, ऐसा आकाश में घुमाया और फेंक दिया उसको, सीधा जरासंध के उसी जगह पर जाकर पहुंचा वो, जहां से भाग गया था वो। जरासंध ने देखा, अरे बाप रे, इतने भयंकर हाथी को इतना फेंकने वाला कौन है वो योद्धा। बोले कंस महाराज वहां पर अखाड़े में मल्ल युद्ध खेल रहे थे, तभी यहां पर आ गया था वो, उसको फेंक दिया उन्होंने। तुरंत 2 कन्या को लेकर सीधे उसके पास भी गए, बोले कोई युद्ध वुद्ध नहीं करना है अपने को, दोस्ती बढ़ाना है, लड़के को ले लो, शादी करो, जवाई बन जाओ, ऐसा पूरा वर्णन दिया उसका कंस का। वो चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजयी कंस महाराज, मुनि लोग वर्णन करते हैं कि रावण और हिरण्यकशिपु से भी वो बलवान था, रावण और हिरण्यकशिपु से भी वो बलवान था कंस। ये जो था ना शिशुपाल, वो भी रावण और शिशुपाल दंत हिरण्यकशिपु से बलवान थे, वो उससे भी बलवान कंस था। वो कंस जो है वो यहां पर आके कन्या बन गया, आप देखो उसकी स्थिति क्या है। आपने बहुत बड़ा होता है ना तो उसका अपमान होने पर बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि सड़क छाप आदमी को अपमान हो गया तो ज्यादा दुख नहीं होता है उसको। बड़े आदमी का जब कोई होता है अपमान, अभी वो आदमी इतना बड़ा पुरुष है, वो यहाँ के कन्या बन गया, राजा के वस्त्र में आया था, देखा तो अंदर गड़बड़, क्या करें अभी, वापस चले जाए तो देश के लोग क्या बोलेंगे, वापस जा सकता नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी सखियाँ बहुत चतुर, सखियाँ तो बहुत चतुर होती हैं, बहुत गांव की गवार लगती है, लेकिन इस पाल में बहुत चतुर होती हैं, तुरंत ये जो कंस का रूप है ना बदलते हुए देखती है वो, और ये हंसने लगती, तालियां बजा के हंसती है। सब तालियां बजाओ, सब लोग तालियां बजाओ। हरि बोल। अच्छा हुआ, रोज रोज हमारे पास राक्षस को भेज के हमको तंग करते हो, आतंक मचाते हो। आज नियति ने तुम्हारे साथ अच्छा न्याय किया है। तो कंस रोने लगता है, देखो आप चक्रवर्ती सम्राट, इसने कोया पीड़ को कई मील तक फेंका था, वो रोने लगा, बचाओ बचाओ, कुछ करो मेरे लिए। बोला कुछ करना है, ये देखो यहाँ पर गोबर है, इसके कंडे लिपने पड़ेंगे आपको। कैसे लिपने हैं? आधे ब्रजरज, आधे कंडे, आधे गोबर को मिलाना है, गोल गोल करना है और पेड़ पे थापना है। जब सूख जाएगा तो सारों को इकट्ठा करना है, टोकरी में डालना है, टोकरी सर पर रखनी है, गौशाला में पहुंचाना है, वहां पर उसको रचना है अच्छी तरह से। फिर गौशाला में आना है, गोमूत्र गोबर को साफ करना है, गायों को साफ करना है, उसका दूध निकालना है, मंथन करना है, मक्खन बनाना है, घी बनाना है, मटके में लाके रखना है, मथुरा जाके बेचना है। नहीं, मथुरा जाके नहीं बेचूंगा, यहाँ जो करना है। अरे गोपियों ने 6 महीने तक कंडे लिपवाए उससे, 6 महीने तक। तालियां पीटते हुए हंसते हंसते रो रहा है और वो हंसते जा रही है, सेवा कर रहे हैं। 6 महीने के बाद राधा रानी पिताजी का हाथ पकड़ के वहां पे आ जाती है, तो ये कंस महाराज उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले किशोरी जी बचाओ। तो राधा रानी छोटी सी कन्या थी, इसमें उंगली उठाती है, याद रखना दोबारा यहां पर आओगे परमानेंट कन्या रहोगे। अब की बार सब, क्योंकि पिताजी बहुत, मतलब पिताजी देखते हैं ना, अरे हम तो इनको टैक्स पे करते हैं, रेगुलरली जाके वहां पर टैक्स पे करके आते हैं, हमारे महाराज है ये, तो उनको डर भी उनका है, लेकिन देख भरे है कि बेचारे इतनी भयंकर अवस्था में है, क्या करें। दया आती है उनको, भाई बहुत शरणागत हो गया है, बहुत पश्चाताप हो गया है इसका, अभी थोड़ा उसको माफ कर दो। तो फिर वो हाथ उठाकर, उंगली उठाकर उसको इशारा करती है, एक बार अभी 6 महीने के बाद आपको माफ करती हूँ, ये किशोरी कुंड है, छलांग लगा लो इसमें, पुनः पुरुष शरीर प्राप्त हो जाएगा, भागो यहां से। तो कंस जो है तुरंत छलांग लगाते हैं, जैसी अवस्था में वैसे वो पुरुष बन जाते हैं, उसे गीले वस्त्र में सीधे यहां से मथुरा तक भागते हैं, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के भी देखते नहीं, क्यों पीछे मुड़ के देखा और श्री जी का माइंड चेंज हो गया तो सीधे भागते हैं वहां पर। तो एक सभा में ये चर्चा हो रही है, एक सभा में जहां पर गोवर्धन को भगवान ने उठाया, तो भगवान के गौरव के बारे में नंद बैठक जा रहे हैं हम लोग, नंद बैठक पे वहां पर चर्चा हुआ करती थी हमेशा, रोज शाम को बैठक बैठती थी, सब बड़े बड़े ग्वाल वाल वहां बैठते थे और आज क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करते थे। तो जब गिरिराज जी को उठाया तो उन्होंने ये डिस्कशन किया कि तुम्हारा बालक, नंद का बालक, तुम नंद महाराज बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारा बालक कोई संत है, कोई ऋषि है, कोई महात्मा है, कोई देवता है, कोई सिद्ध पुरुष है, ये गिरिराज जी को उठाया है। तो गिरिराज जी उठाने की बात हुई तो नंद महाराज कहते हैं, हाँ हाँ, जब गर्ग जी आए थे उन्होंने कहा था कि ये एक दिन गिरिराज को उठाएगा, इसका नाम गिरिराज धारण हो जाएगा, गोवर्धन धारी हो जाएगा, गिरिधारी हो जाएगा। बोला क्या, गर्ग महाराज कभी आए थे? क्योंकि गर्ग महाराज को तो वसुदेव ने बड़े कॉन्फिडेंशियली भेजा था ना, बोला था किसी को बोलना नहीं, ये फंक्शन जो है वो प्राइवेटली करना, किसी को इन्विटेशन मत देना, केवल घर के परिवार के लोग, कोई बिरादरी के लोग नहीं। तो पहली बार ऐसे अचानक उनसे मुंह से ये बात निकल गई कि गर्ग मुनि आए थे, उन्होंने कहा था, तो सबको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, हर बार बोलते हो तुम भाई हो, बिरादरी के हो, ऐसे हो ऐसे हो, बहुत डायलॉग मारते रहते हो, और इतना बड़ा इवेंट हुआ, हमने तुमने हमको बताया भी नहीं। तो उन्होंने बाद में सोचा, अरे गड़बड़ हो गया मेरा मुंह से, तो बहुत बताना कोशिश किया कि ऐसा था वैसा था, कंस का भय था, वसुदेव का संदेश था, वगैरह वगैरह, मैंने बहुत गुपचाप ये किया क्योंकि बहुत समस्या थी, नहीं मानने को तैयार है वो। उनका क्रोध जो है ना, देखो 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 को गुस्सा है तो 8 को आता है, 8 को आया तो 12 को आता है, फिर एकदम बहुत बड़ा माहौल बन जाता है, सब लोग ऐसे हो गए। फिर कोई खड़ा होकर बोला, हे नंद महाराज को बिरादरी से हटा दो, रस्टिकेट कर दो इसको, तो मामला बहुत गंभीर हो गया अभी तुम तो। और एक ग्रुप खड़ा हो जाता है वृषभानु महाराज का, और वृषभानु महाराज कहते हैं, हे ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो मैं जानता हूँ, मेरे घर पे भी वर्ग मुनि आए थे, उसके बाद में नंद महाराज के पास गए थे, बाद में मेरे पास भी आए, उन्होंने मेरे कन्या का भी भविष्य बताया था वगैरह वगैरह, मैं जानता हूँ परिस्थिति बहुत गंभीर थी उस समय। तो सब लोग जो चिल्ला रहे थे वो बोले, इसको भी रस्टिकेट कर दो। अभी और मामला गड़बड़ हो गया, तो एक तीसरा ग्रुप खड़ा हो गया, वो कहते, हे नंद महाराज को रस्टिकेट करने की बात कर रहे हो, तहां तक ठीक है, इनको मत करना, इनकी कन्या महाप्रतापी है, इसके वजह से तो तुम्हारे यहाँ पर राक्षस ने आ रहा है। और तब वो तीसरे ग्रुप ने ये कहानी सुनाई उनको, कैसे यहाँ पर कंस आया था और कैसे कंसनी गोपी मुटल्ली गोपी बन गया था। वो बात तो भूल गया बताने को मैं आपको। वो जो है ना, वो जब आई, उसका नाम था मुटल्ली गोपी, बड़े बड़े नितंब वाली, अरे बड़े नितंब नहीं, अरे मुटल्ली गोपी, अरे थोड़ा सा गोबर उठा लो, थोड़ा वजन कम हो जाएगा तेरा, ऐसे बोलती है गोपी उसको। तब उनको समझ में आया कि ये कन्या के यहाँ होने की वजह से, जो महाप्रतापी कन्या है, इसके वजह से तुम्हारे दरवाजे में कोई राक्षस नहीं आया। तब सारा माहौल शांत हो गया, सब गले मिले और घर चले गए। तो ऐसे यहाँ पर इसी कुंड में कंस को अपना दोबारा शरीर पुरुष का प्राप्त हो गया, यहाँ से भाग गया वो। ये राधारानी का बड़ा प्रिय कुंड है। तो मुटल्ली गोपी, बड़ी नितंबिनी गोपी, कंसनी गोपी, इसमें एक रहस्य की बात समझना जरूरी है। अगर आप लोगों में से कोई भी पुरुष या स्त्री, समझो यहाँ पर अचानक स्त्री बन गए, अगर आपकी चेतना सही जगह पर है तो आपको बड़े भाग्यवान मानोगे, मानना भी चाहिए, क्योंकि वैसे गोपी बनकर सेवा करने का सब लोग सपना देखते हैं, साधना करते हैं ना, तभी सोचते हैं कि कभी गोपी बन जाऊं। अचानक गोपी बन गए तो रोना नहीं फिर पद में। तो वो भाग्य कंस को प्राप्त हुआ था, नेचुरल एकदम ऑन द स्पॉट प्राप्त हुआ था। और वो भी जो गोपियां जो दिन रात बड़े प्रेम से गीत गाते हुए, आनंद भरे हुए भावना से कविता करते हुए रोज करते रहते ना, वही काम करने का मौका कंस को मिला था। और वही काम साइमल्टेनियसली उसी समय सारी गोपियां बड़े प्रेम से गीत गाते हुए भी कर रहे थे, एक व्यक्ति रोते रोते ये काम कर रहा था। क्या कारण है उसका? उसकी मति भ्रष्ट थी। इसलिए मति भ्रष्ट होने से परम भाग्य प्राप्त होने पर भी आदमी रोता है। मति सही होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस सही होनी चाहिए। इतना परम गति जीवन की उसको वहीं प्राप्त हो गई थी। उसको कंस को भगवान द्वारा पीट कर मरने की कोई जरूरत नहीं थी, वहीं पर उसका उद्धार हो गया था ऑलरेडी। और बोलता बढ़िया हो गया, अभी कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, कोई शाप की जरूरत नहीं, ये तो उद्धार हो गया मुझे, अभी यही रखो मुझे अपने गोद में। लेकिन वो रोज रोता था, मुझे जरा बचाओ, पुनः पुरुष शरीर प्राप्त करा दो, रोज प्रार्थना करता था। हमारी ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए, इसलिए संतों का संग हमेशा रखना चाहिए। संतों के संग में हमारी चेतना सही दिशा में रहती है, सही जगह रहती है। और क्या शाप है और क्या भाग्य है और क्या वरदान है, ये हम सब समझ जाते हैं। हाँ, वो कैंसर हो गया तो बोलते क्या हमने ही, हमको ही कैंसर होना था। इतने लोग पापी दुनिया में शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनको कैंसर नहीं होता है। हाँ, दाऊद इब्राहिम अभी घूम रहा है आराम से, हम लोग यहाँ पर कैंसर में क्यों पड़े हैं? लेकिन अगर हम समझते हैं हमारी मति सही जगह पर है, तो ऐसी भयंकर घटना हमारे साथ होने बाद भी हम उसमें से अमृत ढूंढ के निकालते हैं कि भगवान को क्या देना है हमको, उसमें कोई परम भेंट हमको देनी है भगवान को, ये समझते हैं। हर कठिनाइयों को, हर संकट को, हर समस्या को हम आते हुए धन्यवाद करते हैं भगवान का। तो कंस की और गोपियों के बीच में क्या फर्क है? गोपियां भी वही कर रही है, कंस भी वही कर रहा है, लेकिन कंस जो है रो रहा है और गोपियां बड़ा आनंद का अनुभव कर रही हैं। तो हमें वो गोपियों की तरह रहना चाहिए, गोपी होने पर रोना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।